नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के साथ।
बच्चों, मैं पप्पू राय, सहायक प्राध्यापक, पूर्वोत्तर महाविद्यालय सोनपुर सारण। आज हम समाजशास्त्र के 31वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ना है। सांस्कृतिक विविधता, विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर आधारित होता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े सत्व जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सांस्कृतिक विविधता कभी कभी कठोर चुनौतियां भी उत्पन्न कर देती हैं। कभी कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं भी कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं। भारत में यद्यपि लोगों तथा संस्कृतियों के बीच विद्यमान विविधताएं अनेक प्रकार की कठोर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, फिर भी भारत की स्थिति दुनिया के अन्य राष्ट्रों की तुलना में कुल मिलाकर काफी अच्छी है। सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य। समुदाय का अर्थ होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर आपस मिलकर रहने की भावना होती है। व्यक्तियों का समूह जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। अपने देश भारत में सांस्कृतिक एवं सामुदायिक विविधता के कारण उत्पन्न बड़ी बड़ी चुनौतियां जैसे क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीयता की समस्या है। इसके लिए हमें सांस्कृतिक समुदायों और राष्ट्र राज्य के बीच के संबंधों को समझना आवश्यक है। इस संसार में अपना अस्तित्व सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक अस्थायी पहचान की जरूरत होती है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं दूसरे से अलग कैसे, लोग मुझे कैसे जानते हैं और समझते हैं। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हमारे जीवन में लगातार चलते रहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत एवं लंबी होती है, जिसमें कुछ विशेष लोगों के साथ लगातार संवाद, वार्तालाप, कभी कभी संघर्ष भी होता रहता है, जैसे कि हमारे माता पिता, परिवार, नातेदार, समूह एवं हमारा समुदाय भी। हमारा समुदाय हमें भाषा एवं सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यही हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है। यह समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। अपने सर्वाधिक सामत्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त सत्व होता है जिसमें राजनीतिक, विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है परंतु उसे परिभाषित करना कठिन होता है। राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाली सबसे नजदीकी कसौटी राज्य है। राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है, इसलिए दोनों राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच एक-एक यानी एक-एक का संबंध होता है। एक राष्ट्र एक राज्य, एक राज्य एक राष्ट्र। संक्षेप में आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना जरूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज एक राज्य के लिए राष्ट्र एक सर्वाधिक स्वीकृत अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितना कि राष्ट्रों को राज्यों की। अधिकांश राज्य आम तौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति संकालु रहे हैं और उन्होंने उसे कम करने की या मिटाने की कोशिशें भी की हैं। तथापि अनेक सफल उदाहरण हैं जिसमें भारत भी एक है, जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में समरूप किए बिना भी एक मजबूत राज्य बनाना पूरी तरह संभव है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। सामुदायिक पहचान के बहुत से आधारों जैसे भाषा, धर्म, निर्जाति आदि में से कोई एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चूंकि सामुदायिक पहचान राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती है, इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंधन कर सकेंगे, किंतु सांस्कृतिक विविधता का दमन करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसे उन अल्पसंख्यक अथवा अधीनस्थ समुदायों का अलगाव हो जाता है जिनकी संस्कृति को गैर राष्ट्रीय मान लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी दमनकारी एवं सामुदायिक पहचान को और गहरा बनाने का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम से कम उसे बनाए रखना व्यवहारिक तथा सिद्धांताश्रित दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करे अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करे, सोशल मीडिया पर शेयर करे और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करे। नमस्कार।